प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। आज 3 जुलाई 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन तीनों दोस्तों के नाम हैं विधाता रानी, आप अजमेर राजस्थान से हैं, देवानंद आपका गांव है रानीपुर, जिला है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश, और चंद्रशेखर कुमार आप हैं बरहारा बिहार से। तो विधाता, देवानंद और चंद्रशेखर आप तीनों युवा मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों इसी क्रम में जो अभी हमारे अक्टूबर और नवंबर बैच के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इसी क्रम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं अक्टूबर नवंबर बैच के लिए, मैं रिपीट कर देता हूं, इसकी डेट है 21 अक्टूबर से क्लासेज शुरू होंगी और 4 नवंबर तक चलेंगी, यानी कि ये 15 दिन की क्लासेज हैं जिसके लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं ओपन है, उसमें डिस्काउंटेड सीट्स हम लोग रखे होते हैं, यानी कि जो अभी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको ₹2000 का अभी डिस्काउंट मिल रहा है। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अब थोड़ी सी ही डिस्काउंटेड सीट्स बची हैं, तो अगर आप लोग विचार कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने का और यह भी चाहते हैं कि इस डिस्काउंट का फायदा आपको मिले, तो मित्रों अब वक्त थोड़ा सा कम है, मैं इसीलिए आपको इस तथ्य की पूर्व सूचना दे रहा हूं कि अब थोड़ी सी ही डिस्काउंटेड सीट बची हुई है और अगर आपको फायदा लेना है तो अब विलंब और अधिक करने का वक्त नहीं है, आपको चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। तो दोस्तों ये एक छोटी सी सूचना थी और अब सूचना के बाद आइए अब हम लोग बधाई देते हैं रोशन कुमार को जो झारखंड के रहने वाले हैं और हमारे सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने सूचना दी है कि झारखंड के पुलिस में उनका सब इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्शन हो गया है और लगातार वो और आगे के लिए कोशिश कर रहे हैं बेहतर के लिए। तो रोशन इसके लिए मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और भविष्य में आप और अच्छी सफलता प्राप्त करें इसके लिए हम सब ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा खासकर सेकेंड बैच के स्टूडेंट्स से कि देखिए आप लोगों को नो डाउट एकेडमी से गए हुए बहुत दिन हो गए, सेकेंड बैच ऐसा लगता है जैसे कि इतिहास के दिन हो। आप लोगों को चाहिए कि चूंकि वो आपके बैच के स्टूडेंट हैं, इस तरह से आप अपना एक ग्रुप बनाइए। ग्रुप का मतलब है कि इंटरेक्शन होना चाहिए, आपके संबंधों का जाल, एक अच्छा सा अच्छा खूबसूरत जाल, अगर आप जैसे जाल कहना चाहें, एक नेटवर्क कह लीजिए, अंग्रेजी में अच्छा शब्द है, वो बनना चाहिए। तो आप लोग को चाहिए कि आप अपने इस दोस्त को बधाई दें, इसी बहाने आपका उनसे संवाद स्थापित होगा, रुक गया है वो फिर से शुरू होगा और इस तरीके से आप पाएंगे कि कुछ सालों के बाद आप सच में कितने शक्तिशाली हो गए हैं, अपने आप को कितना कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं और पता लगा कि आप जहां जा रहे हैं पूरे देश में कोई ना कोई वहां आपको अपना मिल रहा है और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी संपत्ति और भी कोई दूसरी हो सकती है। इससे बड़ी तो नहीं हो सकती, हां संपत्तियां बहुत सी हैं। तो रोशन एक बार आपको फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी। मित्रों आइए अब हम लोग न्यूज एनालिसिस पर आते हैं। मुख्य विषय के रूप में आज मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा, लेकिन पहले हम थोड़ी सी कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। दोस्तों आपने एक शब्द सुना इंटरपोल, नीरव मोदी जो प्रवर्तन निदेशालय जिन्हें ढूंढ रहा है और जिन्होंने बैंकों का बहुत सा धन कह लीजिए कि ले लिया है, आपको मालूम है ये किस्सा मालूम है, विदेशों में है, अब उसकी एक प्रक्रिया होती है तो चूंकि वो मिल नहीं रहे हैं तो भारत सरकार ने इंटरपोल से रिक्वेस्ट की है, तो अब इंटरपोल ने एक रेड नोटिस जारी किया है, बेसिकली रेड कॉर्नर नोटिस। तो ये जो इंटरपोल है देखिए इसमें दो शब्द हैं, इंटर का मतलब इंटरनेशनल, पोल का अर्थ है पुलिस, यानी कि इंटरनेशनल पुलिस। जिस तरीके से आपके यूएनओ बना हुआ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना हुआ है, आप देखें ना किस तरह की संस्थाएं बनी हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तो इस तरह की खूब संस्थाएं बनी है जो विश्व स्तर पर काम कर रही है। वर्ल्ड बैंक बना हुआ है, एक तो सब चलिए हम सबके अपने अपने बैंक है, फिर दुनिया का भी एक बैंक है। इसी तरह से हम सबकी अपनी अपनी पुलिस है, और इसी के साथ ही साथ एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस भी है जो इस तरह के मामलों को देखती है। तो इंटरपोल, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन का पैटर्न फ्रेंड्स जनरली यही होता है। इसके बाद आपने देखा कि न्यूज में आपने दो चीजें सुनी, वह है बहुविवाह और निकाह हलाला। इसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस पर भी सुनवाई करने को तैयार है, और उसके लिए उसने बकायदे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दी है जिसमें 5 मेंबर्स रखे हैं। 3 तलाक के मामले को लेकर के जो कुछ भी हुआ उससे आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। ये खासकर एक वीमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है, या कह लीजिए कि महिलाओं की स्थिति से संबंधित है। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति अलग है, हिंदू महिलाओं की स्थिति अलग है, ईसाइयों की अलग है। आप देखेंगे कि जो अलग अलग समुदाय हैं, यहां तक कि केवल धार्मिक समुदाय ही नहीं बल्कि जो जातिगत समुदाय भी हैं, यहां तक कि क्षेत्रगत समुदाय हैं, वहां की महिलाओं की स्थितियां आपको अलग अलग मिलेंगी, और उनको उनके जो स्थितियां बनी है उनको कभी परंपराओं के नाम पर जस्टिफाई किया जाता है कि ऐसा ही होता आया है, कभी उसको धर्म के नाम पर जस्टिफाई किया जाता है। उसके अलग अलग अपने अपने तर्क हैं। तो जब हम समानता की बात करते हैं, या कह लीजिए कि संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, तो उन पैमानों पर ये जो पर्सनल लॉ वाले मामले हैं ये फिट नहीं बैठते, तो वहां उनमें बिल्कुल एक दूसरे का विरोध होने लगता है। मुस्लिम समाज के साथ अब एक देख रहे हैं कि महिलाओं में एक अलग तरह की जागृति आई है, और मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग कभी समय निकाल सके तो कभी कभी देखिएगा, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक एक सीरियल आता है, मैंने कभी शायद पहले भी इसकी चर्चा की थी, इश्क सुभान अल्लाह। इश्क सुभान अल्लाह, ये बेसिकली स्त्री मुस्लिम महिलाओं की जो स्थिति है, खासकर 3 तलाक और इन्हीं सब मामलों को लेकर के, उन्हीं पर आधारित है, और बहुत अच्छे से बनाया गया है। उसमें क्या तो एक्टिंग हो रही है, किस तरीके के खूबसूरत उसमें डायलॉग है, उर्दू का तो जो स्वाद है वो मित्रों अद्भुत है, आप उसका भी आनंद लेंगे। और उसमें थीम जो उठाया गया है वो भी बहुत अच्छी, एक्टिंग भी बहुत खूबसूरत है। अगर आप लोग बीच बीच में कभी समय निकाल सके, मन करे कि चलो अब थोड़ा सा चेंज किया जाए, तो आप लोग इश्क सुभान अल्लाह देखिएगा। तो ये एक टॉपिक है, मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये केवल मुस्लिम महिला की ही बात नहीं है बल्कि महिला एज ए होल की बात है, और वो आपके सिलेबस में होता है तो ये एंगल भी छूटना नहीं चाहिए। मान लीजिए आप महिलाओं की स्थिति की ही बात कर रहे हैं तो उसमें कहीं तो मुस्लिम महिलाओं की स्थिति का भी एक लाइन में ही सही लेकिन जिक्र होना ही चाहिए, क्योंकि उनकी स्थिति बिल्कुल दूसरी है, दूसरों की स्थिति बिल्कुल दूसरी है। इसके बाद आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा और न्यूज में भी सुना कि लोकपालों की नियुक्ति को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया है कि लोकपालों की नियुक्ति की क्या स्थिति है। लोकपाल बहुत आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेंस में भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, प्री में भी पूछे जाने की संभावना होती है। अब आगे देखते हैं कि ये टॉपिक किस तरह से आगे बढ़ता है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये इसको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट में डालें या इम्पॉर्टेंट में डालें या लेस इम्पॉर्टेंट में सामान्य में डालें, लेकिन आपकी नजर इस पर होनी चाहिए। दोस्तों अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय के लिए मैंने लिया है विनिर्माण का क्षेत्र। देखिए जो एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है ये एवरग्रीन टॉपिक है। भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है, या कह लीजिए रोजगार की समस्या है, ये सदाबहार टॉपिक है, इस पर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी ही चाहिए। और इसके लिए न्यूज में आपने सुना भी कि किस तरह प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि इस बीच में रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं, तो उन्होंने अपने ढंग से अपने तर्क दिए। उसी में उन्होंने विनिर्माण की बात कही थी कि किस तरह से अभी उन्होंने नहीं कहा, मतलब जो आंकड़े आए हैं कि विनिर्माण के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। दोस्तों कल ईमेल में एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है कि सर आप कहते हैं कि किसी एक विषय पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, फिर आप ये भी कहते हैं कि आपको विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि आईएएस विशेषज्ञ नहीं होता है, वो सामान्यज्ञ होता है। तो फिर हम कैसे ये निर्धारित करें कि किस सीमा तक हम उस टॉपिक पर अपनी पकड़ बनाएं कि हम सामान्य भी हैं, हमारी पकड़ भी है, लेकिन हम विशेषज्ञ भी नहीं है। क्योंकि भटकाव यही होता है कि जब हम पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं तो इतना पकड़ बनाने लगते हैं कि हम विशेषज्ञ बनने लगते हैं। और सवाल यह है कि आप कितनों के विशेषज्ञ बनेंगे। देखिए, उदाहरण के तौर पर तो मैं सामान्य रूप से कह सकता हूं कि MBBS, नो डाउट कि डॉक्टर अपने आप में विशेषज्ञ है, लेकिन MBBS एक मेडिकल की सामान्य पढ़ाई है, राइट? लेकिन जो MD या MS होते हैं वो विशेषज्ञ होते हैं। आप BA पढ़ रहे हैं, BA में 3-4 विषय आप लेते हैं, उनको जिस लेवल तक पढ़ रहे हैं तो BA तक की पढ़ाई तो सामान्यज्ञ ही पढ़ाई है ना, वो कोई आप स्पेशलिस्ट नहीं हो रहे। लेकिन जैसे ही आप MA करने लगते हैं तो एक विषय हो जाता है और फिर आप उस एक विषय पर 2 साल तक पढ़ाई करते हैं तो आप विशेषज्ञ हो जाते हैं। तो पहली बात तो यह है कि आप उस तथ्य को या इस लेवल को अपने दिमाग में लेकर के चलें कि सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ क्या है। लेकिन मुश्किल यह है कि जब हम स्नातक की बात करते हैं तो हमारे लिए वो स्नातक परीक्षा पास करने वाला स्नातक हो जाता है, विषयों को समझने वाला स्नातक नहीं है, वहां प्रॉब्लम होती है। तो इसको बहुत अच्छे से इस पर विचार कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हम BA तो कर लेते हैं लेकिन विषय का ज्ञान हमें नहीं होता, हमने केवल रट रट कर परीक्षा पास की है और UPSC आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपने चूंकि स्नातक कर लिया है तो आपको विषय की बहुत अच्छी समझ हो चुकी है। हाँ, किसी एक विषय की बहुत गहरी समझ नहीं है और उसकी उन्हें जरूरत भी नहीं है, राइट? अब जैसे विनिर्माण का क्षेत्र, अब देखिए कि विनिर्माण के क्षेत्र का अगर कोई विशेषज्ञ होगा तो वो कितनी सारी चीजें आपको बता देगा, लेकिन आपको बहुत ही सामान्य सी चीजें चाहिए, बहुत ही सामान्य सी चीजें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसको कहते हैं? तो सिंपल सी बात है कि हैंडीक्राफ्ट से लेकर के याद रखिए कि जो आपका हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो चीजें बन रही है सबके सब विनिर्माण का क्षेत्र है, हैंडीक्राफ्ट से लेकर के। यानी कि कोई भी चीज जो एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में है, जब आप उसे बना देते हैं, फिनिश्ड फॉर्म में ले आते हैं, तो वो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, मतलब आपने उसको बनाया। सामान्य तौर पर हम लोग इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग से जोड़कर चलते हैं, जो अपने आप में गलत भी नहीं है। तो इस तरीके से थोड़ा सा जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसके बारे में आपको एक सिस्टमेटिक जानकारी होनी चाहिए कि बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है या होता क्या है, भारत में इसका क्या सिनेरियो है, कुछ जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। जैसे भारत में जो अभी टोटल GDP हमारा है उसमें 16% के आसपास मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है, 16% के आसपास। हमने प्लान किया है कि 2022 तक हम इसे 25% तक पहुंचा देंगे, 2022 तक पहुंचाने का ये है। और 2022 तक हमने ये भी लक्ष्य निर्धारित किया है कि इस दौरान हम 10 करोड़ लोगों को रोजगार प्रोवाइड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ये आंकड़ा आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर आप लगातार निगाह रखिए कि सरकार इसके बारे में कर क्या रही है। ठीक है, 2022 तक आप 25% GDP का में करने वाले हैं तो कर क्या रहे हैं। तो जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, आपको बहुत बारीक और छोटी छोटी चीजों को नहीं देखना है। जैसे मेक इन इंडिया, सरकार ने जो मेक इन इंडिया लॉन्च किया है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए किया। और आप देखिए कि डिफेंस तक में सरकार ने कर दिया कि आप आइए और हमारे यहां डिफेंस सेक्टर में, जिसको जनरली लोग ओपन नहीं करते क्योंकि उसमें नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है, उस तक को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ओपन किया जा रहा है। सरकार ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक पॉलिसी घोषित कर दी है। होम मिनिस्ट्री ने बकायदे अपने आर्म्स रूल को कह लीजिए कि ओपन किया है ताकि अब भारत की कंपनियों के साथ मिलकर के विदेशी कंपनियां आर्म्स बनाए, टैंक बनाए, जो कुछ भी किया जा सकता है, उस डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो भारत में बनाए ताकि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो आगे बढ़ सके। फिर आप स्किल इंडिया को देखिए। स्किल इंडिया क्या है? स्किल इंडिया है कि हमारे लोग अगर दक्ष हो जाएंगे तो बट नेचुरल है कि फिर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे। तो फिर आप देखिए कि इस बार के बजट में आप देखिए कि सरकार ने घोषित किया है कि जिनका भी टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से अधिक का होगा उन्हें इनकम टैक्स में 5% की छूट दी गई। जनरली जो है ना वो 30% है, उनको 25%। तो इस तरह के जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सरकार जब इस सेक्टर को एनकरेज करने के लिए जो स्टेप्स ले रही है, जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स वो आपको मालूम हो जाए, बस आपकी सिविल सर्विस की तैयारी हो गई। तो दोस्तों विनिर्माण के माध्यम से, विनिर्माण क्षेत्र के माध्यम से मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं कि कैसे आपको अपने लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं का चयन करना है। तो अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स पर, जो मैं आपको सीधे सीधे प्रोवाइड कर दे रहा हूं, आप अपने ढंग से देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: अपूर्वा पांडे, रेखा द्रविड़ फिरोजपुर पंजाब से, वीरेंद्र सिगरिया, आसिफ खान, सन्नी कुमार भागलपुर बिहार से, प्रियंक साव और नूरी परवीन। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।